उपनिषदों में दार्शनिक विवेचन, वेदों के पश्चात आरण्य ग्रंथों में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा, मनन, चिंतन और स्वानुभूति की प्रक्रिया विकसित हुई, उसी का सुव्यवस्थित एवं परिपक्व स्वरूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है। उपनिषदों का दर्शन परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय है। इसमें एक ओर ज्ञान मार्ग की उपयोगिता वर्णित है तो दूसरी ओर कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग की, एक ओर प्रवृत्ति मार्ग की प्रधानता है तो दूसरी ओर निवृत्ति मार्ग की, एक ओर सर्वम खलविदम ब्रह्म वर्णित है तो दूसरी ओर द्वैत और त्रैत सिद्धांतों का वर्णन है। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सर्वत्र विवादास्पद विषयों का समन्वय प्रस्तुत करता है, जैसे विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, श्रेय और प्रेय, ज्ञान और कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, एकत्व और अनेकत्व, अद्वैत और द्वैत सिद्धांतों में समन्वय प्रस्तुत करता है। इसका अभिप्राय यह है कि एकांगी दृष्टिकोण हानिप्रद है। प्रत्येक वाद के दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अतएव ईश उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अविद्या का मार्ग अंधकार का मार्ग है तो विद्या का मार्ग उससे अधिक अंधकारमय है। अतः ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय अभीष्ट है। एक भौतिक जगत के लिए लाभप्रद है तो दूसरा अध्यात्म के लिए। यहाँ उपनिषदों में प्रतिपादित दार्शनिक विचारों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। एक, ब्रह्म का स्वरूप। उपनिषदों में मुख्य रूप से ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि वह ब्रह्म न स्थूल है, न सूक्ष्म, न लघु है, न गुरु, उसमें न रस है, न गंध, उसके न आँख है, न कान, वह नित्य है, उसमें आकाश ओतप्रोत है। स्थूलम अनडु अह्रस्वम अदीर्घम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अस्मिन् नु खलवरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च। दो, ब्रह्म से मन आदि में गति। ब्रह्म चक्षु, श्रोत्र, वाणी और मन आदि की पहुँच से परे है। उसकी सत्ता से ही चक्षु, श्रोत्र, वाणी और मन आदि कार्य करते हैं। यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तीन, ब्रह्म सर्वव्यापी है। ब्रह्म इस सारे चराचर जगत में व्याप्त है। वह सारे जीवों के अंदर विद्यमान है। वह अंतर्यामी है। वह कर्मों का नियंता है। वह साक्षी है। वह चेतन है। वह अद्वितीय और निराकार है। क, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ख, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। चार, ब्रह्म सृष्टिकर्ता। सृष्टि के आदि में ब्रह्म अकेला था। उसने कामना की, उसके ईक्षण से ही सृष्टि की रचना हुई। सदैव सौम्ये दमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम तदैक्षत बहुस्याम प्रजा येति तत्तेजो असृजत। पांच, ब्रह्म साक्षात्कार लक्ष्य। केन उपनिषद का कथन है कि मानव जीवन का लक्ष्य ब्रह्म साक्षात्कार है। उसके बिना जीवन निरर्थक है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। छ, आत्मदर्शन से सर्वज्ञता। बृहदारण्यक का कथन है कि आत्मा का ही दर्शन, श्रवण, मनन और ध्यान करना चाहिए। उसके ज्ञान से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मनिदृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। साधन से अमरत्व नहीं। बृहदारण्य का कथन है कि आत्मज्ञान में धन साधक नहीं अपितु बाधक है। धन से अमरत्व की आशा मात्र दुराशा है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। आठ, अद्वैत तत्व। वेदांत दर्शन में जिस अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है उसका बीज मांडुक्य उपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें ब्रह्म की जागृत आदि चार अवस्थाएं, स्थूल आदि शरीर, वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ आदि समष्टि और व्यष्टि रूप, आनंदमय आदि कोश तथा तुरीय शिव अवस्था का प्रतिपादन है। इसी आधार पर वेदांत दर्शन में चतुष्पाद ब्रह्म की कल्पना की गई है। प्रपंचोपशमं शांतं शिवं अद्वैत चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। नौ, त्रैतवाद। त्रैतवाद के समर्थन में ऋग्वेद और अथर्वेद में पठित प्रसिद्ध मंत्र द्वासुपर्णा श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन तत्वों का उल्लेख है और इनके गुणों का वर्णन है। ईश्वर कर्मफल का उपभोक्ता और साक्षी रूप है, जीव कर्मफल भोगता है, प्रकृति अचेतन है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादु अति अनश्नन अन्यो भी चाक शीति। 10. माया और माई। वेदांत में प्रसिद्ध माया का सर्वथम वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें प्रकृति को माया और पुरुष को माइन, मायावी माया का स्वामी या कर्ता कहा गया है। मायां तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। 11. प्रकृति त्रिगुणात्मक। श्वेताश्वतर में प्रकृति के तीन गुणों का सांकेतिक रूप में उल्लेख है, साथ ही यह भी निर्देश है कि यह प्रकृति अज है। सत्व गुण के लिए शुक्ल, रजस के लिए लोहित और तमस के लिए कृष्ण शब्द है। सांख्य और योग दर्शन इन्हीं तीन गुणों का विवेचन है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वहनी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। 12. तत्त्वमसि। वेदांत में प्रतिपादित तत्त्वमसि महावाक्य का मूल छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को तत्त्वमसि का विस्तृत उपदेश दिया है। स य एषोऽणिमेत दात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति। 13. एकेश्वरवाद। श्वेताश्वतर उपनिषद में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन हुआ है। वह ईश्वर एक है, वह अपनी शक्तियों से नाना रूपों को धारण करता है। वही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, ब्रह्मा और प्रजापति आदि अनेक रूपों में है। क यह एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। ख तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तदद चंद्रमा तदेव शुक्रम तदब्रह्म तदापस्तत् प्रजापति। 14. कर्मफल। शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। शुभ कर्मों से पुण्य और अशुभ कर्मों से दुख होता है। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। 15. श्रेय और प्रेय। कठ उपनिषद में श्रेयस और प्रेयस दो मार्गों का उल्लेख है। भौतिक उन्नति को प्रेय मार्ग कहते हैं और अध्यात्म को श्रेय मार्ग। सामान्य व्यक्ति प्रिय मार्ग को अपनाते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति श्रेय मार्ग को अपनाकर आत्मिक आनंद पाते हैं। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति यतेर्थाद् य उप्रेयो वृणीते। 16. गीता के आधार दो मंत्र। ईश उपनिषद के दो मंत्र संपूर्ण गीता के आधार हैं। गीता में दो विषयों को मुख्य रूप से लिया गया है, एक आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, दो निष्काम कर्म योग। ईश उपनिषद से ये दोनों भाव लेकर गीता का प्रणयन हुआ है। ये दो मंत्र हैं क वायुरनिलम अमृतम यथेदम भस्मांतम शरीरम। अर्थात यह आत्मा अमर है और वायु के तुल्य है, यह शरीर नश्वर है, भस्म हो जाता है। ख कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, निष्काम कर्म करने वाला कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। 17. विश्ववंधुत्व। विश्ववंधुत्व और समदर्शिता का संदेश सर्वप्रथम ईश उपनिषद में प्राप्त होता है। मंत्र में कहा गया है कि जो सब जीवों में अपनापन देखता है और अपने में सब जीवों को समझता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। 18. समन्वय की दृष्टि। उपनिषदों में सर्वत्र समन्वय की भावना है, दोनों पक्षों में ग्राह्य हो उसे ले लेना चाहिए। इसे दृष्टि से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के समन्वय का उपदेश दिया गया है। कर्म मार्ग से भौतिक जीवन सफल होता है और ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार संभूति और असंभूति के समन्वय का उपदेश है। संभूति से अध्यात्मवाद और असंभूति से भौतिकवाद लिया गया है। भौतिकवाद से लौकिक उन्नति होती है और अध्यात्मवाद से पारलौकिक सुख। क अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। ख संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदोभयम् सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते। 19. कर्म कांड की हीनता। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या और आध्यात्म की अपेक्षा कर्मकांड को बहुत हीन बताया गया है। यज्ञ और कर्मकांड का फल अस्थाई है, यह जन्म और मरण के बंधन में डालता है। प्लावा येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा एतश्रेयोभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवा पियन्ति। 20. एकात्मवाद। इस उपनिषद में एकात्मवाद का प्रबल समर्थन किया गया है। उपनिषद में कहा गया है कि जो सब प्राणियों में एकत्व की अनुभूति करने लगता है उसे संसार में कहीं भी मोह और शोक नहीं होता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मै वा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यतः। प्रोफेसर विंटरनिट्स ने लिखा है कि लुडविग स्टाइन ने एकात्मवाद को विश्व की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण माना है, किंतु यह दार्शनिक विचार भारतीय उपनिषदों में 3000 वर्ष पूर्व ही प्रतिपादित हो चुका था। प्रोफेसर विंटरनिट्स ने उपनिषदों के महत्व के विषय में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर के विचार विस्तार से उद्धृत किए हैं, जिसमें उसने कहा था कि उपनिषद मेरे जीवन में शांति के साधन रहे हैं और मृत्यु में भी शांति के साधन रहेंगे। प्रमुख उपनिषदों का संक्षिप्त विवरण। 1. ईश उपनिषद। यह उपनिषद सारी उपनिषदों का आधार है। इसमें वर्णित सिद्धांतों का ही सारी उपनिषदों में विशदीकरण है। यह मूल रूप में यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। क्रम आदि में थोड़ा अंतर हुआ है। इसमें 18 मंत्र हैं, जिसका सारांश इस प्रकार है। ईश्वर सारे चर अचर जगत में व्याप्त है। त्याग भाव से संसार का उपभोग करो। दूसरे के धन के लिए लालायित न हो। 100 वर्ष तक निष्काम भाव से कर्म करते रहो। आत्महत्या करने वाले घोर नरक में जाते हैं। इसका यह भी अभिप्राय है कि जो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। ईश्वर चल अचल दूर पास और बाहर भीतर सर्वत्र है। मंत्र 5, सबको आत्मवत देखने से कभी भी मोह शोक नहीं होता। मंत्र 7, ईश्वर निराकार सर्वव्यापक शुद्ध और निष्पाप है, वही सबको कर्मानुसार ऐश्वर्य देता है। मंत्र 8, अविद्या और विद्या दोनों का समन्वय रखो। कर्म मार्ग से भौतिक सुख और ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र 9 से 11, संभूति और असंभूति का समन्वय रखो। असंभूति से लौकिक सुख और संभूति से अमृतत्व मिलता है। मंत्र 12 से 14, सत्य का मुख सुनहले पात्र से ढका हुआ है, इसको हटाकर सत्य रूप परमात्मा का दर्शन करें। मंत्र 15, जो पुरुष सूर्य में है वही जीव में भी है। मंत्र 16, शरीर नश्वर है आत्मा अमर है, सदा ओम का स्मरण करो। मंत्र 17, हम ऐश्वर्य के लिए सन्मार्ग पर चले। मंत्र 18, क ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रिध कस्य स्विद्धनम्। ख विद्यया मृतमश्नुते ग अग्ने नय सुपथाराय अस्मान। 2. केन उपनिषद। इसको तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक हैं और शेष 2 गद्यात्मक। इसका संबंध सामवेद से है। प्रथम खंड में बताया गया है कि ब्रह्मा चक्षु श्रोत वाणी और मन की पहुंच से परे है। उसकी सत्ता से ही आँख कान वाणी प्राण और मन अपना कार्य करते हैं। इस निर्गुण ब्रह्म को जानो। द्वितीय खंड में बताया गया है कि ब्रह्मा अवर्णनीय है अनिर्वचनीय है। जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वह कुछ नहीं जानता। इस जीवन की सार्थकता ब्रह्म ज्ञान से है, अन्यथा यह निरर्थक है। तृतीय और चतुर्थ खंड में कथा दी गई है कि ब्रह्म की विजय को अग्निवायु आदि ने अपनी विजय समझा। ब्रह्मा ने देवों की परीक्षा के लिए एक यक्ष को रखा और कहा कि यह कौन है। यक्ष ने अग्नि और वायु की परीक्षा के लिए तिनका रखा, उसे न अग्नि जला सका और न वायु उड़ा सका। इंद्र की परीक्षा के समय यक्ष के स्थान पर उमा प्रकट हुई। उसने बताया कि ब्रह्म की शक्ति के आधार पर ही अग्नि वायु आदि में शक्ति है, अन्यथा उनमें कोई शक्ति नहीं है। इंद्र ब्रह्म को समीप से जान पाता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही जप संयम आदि हैं। क यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ख इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। 3. कठ उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन खंड हैं। इसमें काव्यात्मक मनोरम शैली में गूढ़ दार्शनिक तत्वों का विवेचन है। अपनी रोचकता के कारण यह सुविख्यात है। इसमें सुप्रसिद्ध यम और नचिकेता की कथा है। संक्षिप्त कथा। उद्दालक ऋषि के पुत्र वाजश्रव सर्वमेध यज्ञ के अंत में ऋतुजों को जीर्ण शीर्ण गायें दक्षिणा में दे रहे थे। नचिकेता उनका पुत्र था। उसको पिता के इस कृत्य पर ग्लानि हुई। उसने कहा, पिताजी मुझे किसको दोगे? पिता ने क्रोध में कहा, यम को। नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँच गया। यमराज ने अतिथि सत्कार में उपेक्षा के प्रायश्चित के रूप में उसे तीन वर दिए। नचिकेता ने ये तीन वर मांगे। एक, मेरे यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो। दो, दिव्य अग्नि विद्या। तीन, जीवन और मृत्यु का रहस्य। यमराज ने दो मांगे स्वीकार कर ली। नचिकेता के बहुत हट करने पर यम ने जीवन मृत्यु का रहस्य उसे बताया। तीसरे प्रश्न के उत्तर में सारी ब्रह्म विद्या आ गई है। कठ उपनिषद में दार्शनिक महत्व के संदर्भ। एक, संसार अनित्य है। संसार के भोग विलास क्षणिक हैं। धन से आत्मिक शांति नहीं मिलती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। दो, श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। सामान्य जन जीवन यापन के लिए प्रेय मार्ग को अपनाते हैं, परंतु विद्वान व्यक्ति श्रेय मार्ग को ही अपनाते हैं। श्रेय मार्ग आत्मिक शांति और मोक्ष का साधन है। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणेते, प्रेयो मंदो योगक्षेमो वृणेते। तीन, ओम सारे वेदों और शास्त्रों का सार है। ओम के लिए ही सारे जप तप आदि किए जाते हैं। वही संसार में सबसे बड़ा सहारा है। सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद्। एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम। चार, आत्मा अजर और अमर है। न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसको ज्ञानी ही जान पाते हैं। यह प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। न जायते मृते वा विपश्चित, अडोरडीयान महतो महीयान। पाँच, यह आत्मा ज्ञान विज्ञान मेधा आदि से प्राप्य नहीं है, आत्मसमर्पण से ही प्राप्य है। भक्त पर उसकी कृपा होती है और उसे आत्मदर्शन होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। छह, जो मनुष्य ज्ञान को सारथी बनाता और मन को लगाम वही परम पद को प्राप्त करता है। सात, आत्मज्ञान के लिए सदा जागरूक रहना और सत्संग में प्रवृत्त होना आवश्यक है। यह कठिन मार्ग है, तीक्ष्ण उस्तरे की धार पर चलने के तुल्य है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। आठ, यह आत्मा एक है। जो अनेकत्व देखते हैं वे सदा दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वह आत्मा अंगुष्ठ मात्र है और शरीर में रहता है। उसको शुद्ध मन से ही प्राप्त कर सकते हैं। मनसै वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। कर्मानुसार मनुष्य को जन्म मिलता है। वह नाना योनियों में जाता है। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम। अग्नि और वायु जिस प्रकार एक होते हुए भी अनेक रूपों में हो जाते हैं, उसी प्रकार यह एक आत्मा असंख्य शरीर धारण करता है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। ग्यारह, वह आत्मा ही सारे सूर्य चंद्र तारों आदि का प्रकाशक है। उसकी ज्योति से ही सब तेजोमय है। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बारह, आत्मा मनुष्य के शरीर में विद्यमान है। उसको धैर्य से इसी प्रकार प्राप्त करे जैसे मूंज में से सींक को निकालते हैं। तम स्वात शरीरात प्रवृरेत मुंजादिवेशिकां धैर्येण। चार, प्रश्न उपनिषद। ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए छह महर्षि पिपलाद के पास आते हैं। उन्होंने अध्यात्म विषयक छह प्रश्न पूछे। महर्षि ने बड़ी सुंदरता से सबके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। छह प्रश्न ये हैं। एक, प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दो, प्रजा के धारक और प्रकाशक कौन से देवता हैं और उनमें कौन श्रेष्ठ है? तीन, प्राण की उत्पत्ति, उसका शरीर में आना और निकलना कैसे होता है? चार, स्वप्न, स्वप्न दर्शन, जागना आदि क्रियाएँ कैसे होती हैं? कौन सोता है, जागता है? पाँच, ओम के ध्यान का क्या फल है? छह, षोडश कला वाला पुरुष कौन है, कहाँ रहता है? इस उपनिषद में प्राण और रई से सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। प्राण शक्ति संसार का आधार है। सूर्य में प्राण शक्ति है, वही सारे संसार को प्राण शक्ति देता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से ही आत्मतत्व का ज्ञान होता है। क, प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्यः। ख, प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। ग, स मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च। घ, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानाम अन्विष्यात्। 5, मुंडक उपनिषद। यह अथर्वेदी उपनिषद है। यह मुंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित हुई है। इसमें 3 मुंडक अथवा अध्याय हैं। प्रत्येक 2 खंडों में विभक्त है। इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। मुंडक उपनिषद के महत्वपूर्ण संदर्भ। 1, परा और अपरा विद्या। चारों वेद और वेदांग अपरा विद्या हैं। ब्रह्म विद्या ही परा विद्या है, जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। 2, सृष्टि उत्पत्ति। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। यथोर्णनाभि सृजते गृहणते। 3, कर्म कांड हीन है। ब्रह्म विद्या की अपेक्षा यज्ञ आदि कर्म कांड हीन है। इसका फल अस्थायी है। इससे जीव पुनः जन्म मृत्यु के बंधन में आता है। प्लावा येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। 4, परमात्मा अशरीरी है। परमात्मा अमूर्त है, दिव्य है, अनादि है, प्राण और मन से रहित है। वह संसार के अंदर और बाहर सर्वत्र है। दिव्यो यमूर्त पुरुष, अप्राणो यमना। 5, जीवन का लक्ष्य ब्रह्म है। प्रणव को धनुष बनाओ, जीवात्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य। एकाग्रचित होकर लक्ष्य ब्रह्म को विंधो। प्रणव धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। अप्रमत्तेन वेधतव्यम सर्वतन्मयो भवेत। 6, ब्रह्म की ज्योति से ही सूर्य आदि में प्रकाश। सूर्य चंद्र तारा आदि में अपना प्रकाश नहीं है, उसी ब्रह्म के प्रकाश से सब में प्रकाश है। तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। 7, सत्य और तप से ब्रह्म प्राप्ति। सत्य तप और ब्रह्मचर्य से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निष्पाप व्यक्ति हृदयस्थ उस ब्रह्म को देख पाता है। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा ब्रह्मचर्येण। 8, सत्य की विजय होती है। सत्य से ही देवयान प्राप्त होता है। सत्य से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। 9, त्रैत्ववाद। ऋग्वेद और अथर्वेद में वर्णित त्रैत्ववाद का प्रतिपादक द्वासुपर्णा मंत्र इस उपनिषद में भी आया है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी जीवात्मा और परमात्मा बैठे हैं। उनमें से 1 कर्म फल का भोगता है और दूसरा केवल दृष्टा एवं साक्षी है। 10, ब्रह्म समुद्रवत है। तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्म में इसी प्रकार लीन हो जाता है, जैसे नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में लुप्त हो जाती हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ उपनिषद में है। अनेक श्लोक और भाव कठ और मुंडक में समान रूप से प्राप्त होते हैं।